أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز السامعين، محترم بزرگو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک طریقہ بتایا ہے، مردوں کو، عورتوں کو، کہ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، اور رات کو کیا کرنا ہے، دن کو کیا کرنا ہے، لباس کیسا پہننا ہے. پوری زندگی کا اللہ پاک نے ان کو ایک طریقہ بتا دیا، ایک اصول بتا دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے، کیسی زندگی گزارنی چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، ہمارا بیہیو کیسے ہونا چاہیے، ہمارا طور طریقہ کیسا ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار صراحتاً یہ باتیں صاف صاف واضح طور پر بیان کی ہیں. جو میں سورۃ الاحزاب کی آیات کچھ ہفتوں سے پڑھ رہا ہوں، تو اس میں کوئی انسان، کوئی عورت، مرد اس میں گنجائش نکالنے کی کوشش کرے تو وہ اس کی وتبع ہوا، یعنی کہ اتباع ہوا، اپنی نفس کی وہ پیروی کرنے والا ہے یا کرنے والی ہے، یعنی پھر وہ قرآن اور حدیث کے ماننے والے نہیں بلکہ انکار کرنے والوں میں سے ہوں گے. अल्लाह तबारक तआला ने औरत को बताया है कैसा लिबास पहनना चाहिए, कैसे चलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, ये सारी साफ साफ बयान की गई हैं। अगर आप न्यूज़ पढ़ें और अगर आप तारीख पढ़ें कि लोग पहले ज़मानों में कैसा लिबास पहनते थे, एक गालिबन ऑस्ट्रिया एक यूरोप का मुल्क है, वहाँ का बादशाह जो था वो जब उसकी औरत उसके साथ बीवी मलका चलती थी, जब अपने महल से वो निकलते तो रास्तों में गलियों में वो जब चलते लोगों के सामने से गुजरते हुए फौजियों के लश्करों के अवाम के इंसानों के, तो वो बादशाह अपनी औरत को कहता कि पूरा पर्दा करके घर से निकल, और उसकी औरत मलका जो थी वो पूरा बुर्का करती थी। गैर मुस्लिम थे, यानी मुसलमान की बात नहीं हो रही, गैर मुस्लिम, और उसकी औरत मलका जो थी वो अपना पूरे चेहरे को ढांकती थी, और वो इसलिए कि वो बादशाह ये नहीं चाहता था कि कोई भी मेरी इस औरत को, बीवी को, कोई मलका को देखे, यानी उसके लिए ये औरत बहुत कीमती चीज़ थी या उसके हाँ एक ऐसी चीज़ थी कि उसको, वो जो मैंने बातें कुछ हफ्ते पहले अर्ज़ की थी कि उसको हसद था, जो जायज़ था कि हसद कह लें या शर्म हया थी कि मेरी औरत को कोई देखे, ये कैसे हो सकता है। जैसे कोई हीरा होता है, डायमंड होता है, तो उसकी हिफाजत की जाती है, तो इसी तरह उसको हिफाजत के साथ वो बाहर उसको निकालता। इसी तरह इसी मुल्क में अगर आप यहाँ की तारीख पढ़ लें, बल्कि जो लोग यहाँ हमारे बड़े 1950 में तकरीबन 1960 में जो यहाँ हिजरत करके आए हैं बर्रे सगीर से, तो उस ज़माने में जो तकरीबन 70-75 साल पहले की बात है, ज़्यादा देर नहीं हुई, तो उस ज़माने में उन्होंने खुद देखा है इनका अंग्रेज़ का लिबास, कि इनके यहाँ एक चीज़ ये महज़ब थी कि टोपी पहन कर रखना मर्दों के लिए, और औरतों के लिए स्कार्फ पहनकर अपने सर को ढांक के रखना, स्कार्फ पहनकर रखना, ये एक महज़ब कल्चर था ये अंग्रेज़ का। और लिबास ज़्यादा था, कपड़े ज़्यादा होते थे बदन पे, और ज़्यादा सतर ढांक कर रखते थे मर्द औरतें। और उससे पहले अगर आप और पीछे चले जाएं माजी में 100 साल पीछे, तो उसमें बहुत ज़्यादा शर्म हया थी गैर मुस्लिमों में, अंग्रेज़ में, इसी मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, यूरोप की, बरतानिया की, यहाँ की औरतें चेहरों को, सरों को ढांक कर रखती थी। फिर रफ्ता 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 वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, यानी कि एक चीज़ जो जिसका गुनाह का तसव्वुर नहीं रहता, उसको कहते आदमी, एक इंसान एक चीज़ का आदि हो जाता है, आदि। अब जिस चीज़ का कोई आदमी आदि हो जाए, वो चीज़ जायज़ नहीं, हलाल नहीं हो जाती। अब इनको आदत बन गई है कि अब ये अंग्रेज़, बल्कि अपने भी मुसलमान मोमिन लोग, ईमान वाले, जिनको ये शोभा नहीं देता, ज़ेबा नहीं देता, वो भी आधे नंगे हो गए हैं। और ये क़्यामत अलामात क़्यामत में से है कि लोग लिबास पहनेंगे मगर नंगे होंगे उसके बावजूद, ऐसा बेहुदा किस्म का लिबास। और हज के मौके पे आपको जो मैंने मुताफ के बारे में बताया था पिछले या उससे पिछले हफ्ते बात की थी मुताफ के बारे में, कि ये सवाल उठता है और पूछा जाता है कि मुताफ के अंदर बैतुल्ला की इर्द गिर्द जो जगह है उसको कहते हैं मुताफ, तवाफ की जगह, कि वहाँ तो औरतें मर्द इकट्ठे होते हैं, अब यहाँ पे क्योंकि उनका पुलिस का शर्तों का पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता, मजमा बहुत ज़्यादा होता है, जमी कसीर होती है, वो अपनी कोशिश तो पूरी करते हैं मगर कहाँ तक उनका बात कहाँ तक मानी जाती है, और बहुत सारी उनकी बातें नहीं मानी जाती, लोग एहराम पहनकर मुताफ के अंदर आ जाते हैं, हालांकि उन्होंने उमरा नहीं करना होता, तवाफ करना होता है। अब उनको कौन रोके, कौन मना करे, कौन समझाए? तो जहां मर्द चलेंगे वो सारे मर्दों का एक हजूम होगा, और जहां औरतें होंगी औरतों का एक हजूम होगा, मिक्स नहीं होंगे वो। यहां भी मिक्स होना जायज नहीं है। मसलन 100 औरतें इकट्ठी एक लाइन में जा रही हैं, तवाफ कर रही हैं, हजूम थोड़ा सा हट के, यहां पे कोई 100-200-500 बंदा इकट्ठा जो है इकट्ठे तवाफ कर रहे हैं, ये तरीका कार होगा, ना कि मर्द औरत मर्द औरत मर्द औरत। और इसका एक और भी जवाब है कि आयशा सिद्दीका रदिल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने इजाजत मांगी थी क्योंकि इहराम में मर्दों के लिए तो औरतों के लिए भी मुंह का ढांकना, मुंह पे कोई कपड़ा आ जाए तो उससे दम पड़ जाता है थोड़ी देर के लिए भी। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी शर्म हयात गैरत वाली थी, हालांकि उनको जायज़ था, इजाज़त थी कि चेहरे को नंगा करना और बाकी सारा ढांकना बालों को, मगर उन्होंने इजाज़त मांगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं ऐसी कोई चीज़ बना लूँ कि सर पे कोई चीज़ है लकड़ियों उसके साथ के पर्दा मुंह पे ना लगे, थोड़ा सा आगे हो जाए, यानी कि एक बालिश्त कह लें या थोड़ा बालिश्त तो ज़्यादा है, यानी एक हाथ यानी कि मुंह से थोड़ा सा आगे हो जाए और चेहरे के और कपड़े के दरमियान में कुछ जगह कुछ फासला हो जाए ताकि लोग मेरे चेहरे को डायरेक्ट ना देख सके। अब ये उन्होंने ऐसे क्यों किया, सवाल पैदा होता है। और अल्लाह पाक ने जो हुक्म दिया कि अगर आपने इन लोगों से अज़वाज मुतहरा से आयशा रदिल्ला तआला अन्हा का बहुत ज़्यादा इलम था, उस वक्त के बड़े बड़े जो सहाबी थे मुफ्ती आने थे उनसे ज़्यादा इलम था इनका, उसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि उनसे भी अगर आपने सवाल जवाब करना है, मसले मसाइल पूछने हैं तो वो पर्दे के पीछे पूछेंगे। अब ये उनके लिए फरमाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक तआला ने तरीके उसूल बताए हैं ख्वातीन को, मर्द हजरात को, कि आपने कैसे बोलना है, कैसे चलना है, ज़मीन पर कैसे चलना है, औरतों को बताया गया। अब औरतें इस पे अमल नहीं करती तो ये उनकी अपने नफस की पैरवी वो करने वाली हैं, इत्तबा करने वाली हैं, कुरान और हदीस के बिल्कुल खिलाफ है और कुरान और हदीस के इनकार है, ये मुनकर हैं ये लोग, जो लोग अपनी मर्जी करते हैं और कहते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है या ये इस ज़माने के मुताबिक है। बहरहाल बाकी कुछ बातें मैं अर्ज़ करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि रजब का महीना है और रजब का आधा महीना से ज़्यादा गुजर गया है, जो जनवरी की तारीख है वही रजब की तारीख है, यानी कि अगर आज 17 जनवरी है तो फिर 17 रजब भी है आज, यानी इसी तरह है और ये तारीख तकरीबन इसी तरह चलेंगी आगे। तो रजब का महीना, इसके बारे में भी कुछ बातें मैं अर्ज़ करूँगा। एक और बात, कुछ मैं नुक्ते बयान करूंगा इंशाल्लाह, ताकि सारे जो पिछले बयानात हैं उनके अंदर जो चीज़ें रह गई हैं उनको कवर किया जाए आज, और कुछ मज़ीद फिर आगे बयान किया जाए। असल जो मज़मून है वो है इल्ज़ाम तराशी और बहतान के बारे में, जो मैंने आयत शरीफ़ा शुरू में पढ़ी। उससे पहले मैं कुछ बातें बाकी जो रह गई थी उनको अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आज के दौर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं हमें जो पहले नहीं थी लोगों के पास, यानी टाइम पास के लिए। मैं उसकी मिसाल देता हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो बड़ी उम्र उन्होंने पा ली है मगर पिछले ज़माने में उन्होंने कुछ अच्छी इबादतें की, अच्छा वक़्त गुजरा उनका, मगर क्या हुआ कि इस वक्त जो मीडिया और ये मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट वगैरह लैपटॉप आईपॉड आने की वजह से, अफसोस से ये कहना पड़ता है और ये हमें अपने आप से मुहासबा भी करना चाहिए और पूछना चाहिए अपने आप से कि आया हम भी उसमें मुबतला तो नहीं हैं इस चीज़ में, कि वो सारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी गुजर गई। और ये यहाँ नहीं, सिर्फ बहुत सारी और चीज़ों में भी ये चीज़ लागू होती है, इस बात को ज़रा गौर से सुने, इंसान की बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरी क्योंकि कुछ है नहीं था करने को उस दौर में, घरों में ना टीवी था और रेडियो भी नहीं था, कह जाए कि उनके पास कोई लैपटॉप हो या फोन हो। और वो ऐसा जमाना था या ऐसा जमाना गुजरा उन लोगों पे कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो आगे लोगों को सर्कुलेट करें, कोई वीडियो किसी को भेजें, को कुछ करें, को कुछ, ये बातें तो है ही नहीं थी। अब क्या हुआ कि सारी उम्र इबादत तो कर ली, नमाजें पढ़ ली, अपने आप को मकबूल बना लिया, मगर आखिरी उम्र में 50-60 साल की उम्र के बाद हुआ ये कि अब ज़माना आ गया ये सारा मीडिया का और ये सोशल का और नेटफ्लिक्स का, स्काई का, जी टीवी का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का, स्नैपचैट का, बेशुमार चीज़ें आ गईं। अब यही बंदा जिसने सारी उम्र अपने टाइम को कीमती बनाया, अब इसमें लगकर अपना सारी जिंदगी की इबादत को तबाह करके रख दिया, तबाह करके रख दिया। इस पे थोड़ा सा गौर करें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं उनके लिए दुआ भी करता हूं कि सारी उम्र गुजर गई इबादतों में, अब क्या हुआ कि घरों के अंदर, अपने कमरों के, बेडरूम के अंदर, बल्कि बेड के साथ आपको स्क्रीन मिल जाएगी, बेड के साथ फिटेड स्क्रीन मिलेगी, माजूर हो गए या मस्जिदों में नहीं आ सके, वो बेचारे सारी उम्र मस्जिदों में गुजारी है, अब वो टीवी के आके बैठे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि कुरान पाक की तलावत करते करते, जिक्र करते करते वो दुनिया से चले जाते, कि चलो जो पिछली जिंदगी उन्होंने अपनी बचा कर रखी है, अगली भी कुछ वक्त इसमें गुजार लें और बचा लें। बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने अपने आप को बचा रखा, मौत तलक इन चीजों में पड़े ही नहीं, अपनी इबादत में लगे रहे, किसी चीज की उनको पड़ी नहीं है। और यही उन लोगों के लिए भी है जो अगला मजमून है इंशाअल्लाह अज़ीज, उसकी मैं अहादीस पढ़ूंगा, वो है बोहतान, इल्जाम। ये भी वो चीज है कि जैसे ये सारी चीजें इंसान को तबाह कर देती हैं, और इन्हीं के अंदर वो चीजें होती हैं कि सियासत को लेकर बैठ जाते हैं, सारी दुनिया की कहानियों को लेकर बैठ जाते हैं, जो झूठ मूठ इल्जाम बोहतान सब कुछ चलता है। फिर ऐसी यानी फुर्सत मिल जाती है, माफ करना मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, मेरी भी कुछ ज्यादा उम्र नहीं रहेगी पेंशन के लिए इंशाल्लाह, मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी अच्छी कोई पेंशन मिल जाए, मगर पेंशन के साथ साथ कोई जिंदगी भी अच्छी हो जाए, ईमान और वाली हो। पेंशन लग गई, अब ये नहीं, अब ये फिक्र होनी चाहिए कि अब मेरी उम्र कितनी रह गई है, अब मैंने क्या करना, मैं फारिग हो गया हूं, अब मैंने गार्डनिंग में टाइम जाया करना है या स्काई के आगे बैठकर वक्त जाया करना है या फोन पे वक्त जाया करना है, नहीं, अब तो मेरी जिंदगी के पीछे 5 साल है, साल है, कल का पता नहीं है, तो उसमें मैं किसी के बारे में क्या करना है, सारी उम्र मैंने गुजार दी, पता नहीं क्या मैंने किया, अब मैं इल्ज़ाम पे उतर आया लोगों पे, फारिग हो गए। अब फारिग वक्त जो होता है वो मस्जिदों में हो, कहीं भी हो, अब बड़ा मौका होता है, हर मस्जिद में देखने बड़ा अच्छा मौका होता है इन पेंशनरों को, मस्जिदों में बैठकर गीबतें करना, लोगों पे इल्ज़ाम तराशी करना, बोहतान लगाना, फारिग लोग सारी उम्र की कितनी कराई मेहनत पे पानी फेर देते, ख़त्म, मौत के वक़्त ईमान कुछ भी नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये जो कुरान पाक की आयत मैंने शुरू में बयान की है, इसका क्या मानी है, ये असल था आयशा रदिल्लाहु तआला के बारे में, जिन्होंने बोहतान उन पे बांधा था। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो लोग भोली भाली औरतों पे बोहतान बांधते हैं, भोली भाली औरतों पे बोहतान बांधते हैं, उनका क्या हशर है। जो मोमिन औरतों पर, भोली भाली औरतों पर, और इसमें वो भी औरतें आ जाती हैं जो बज़ाहर तो लगती हैं कि शायद उन्होंने कोई गुनाह किया है, मगर उन्होंने दर हकीकत कोई गुनाह नहीं किया होता। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, हमारी नौजवान बच्चियां हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं, पर्दा नहीं करती, मगर शायद उनके दिलों में दीन ज्यादा हो हमसे भी जो मस्जिदों में बैठे हैं। यह बात याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रही हैं या सही कर रही हैं, वो एक बात का मसला है, वो फतवा मैं नहीं दे सकता। एक गुनाह का इर्तकाब कर रही होंगी कि بغیر دوپٹے کے جا رہی ہیں یا یہ وہ ایک علیحدہ بات ہے, مگر ان پر بھی بہتان باندھنا یا ان کے بارے میں کچھ کہہ دینا وہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس کا گناہ سن لیں. اب یہ میں کچھ احادیث بیان کروں گا تہمت لگانے والوں پر, جو تہمت لگاتے ہیں, الزام تراشی کرتے ہیں. اور عجیب باتیں یہ ہے کہ یہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں لوگوں پہ اور لوگوں کی پگڑی اچھالتے ہیں, رسوا کرتے ہیں, بدنام کرتے ہیں لوگوں کو بغیر کسی ثبوت کے, بدنام کرتے ہیں. اور یاد رکھنا کہ زنا کسی کے بارے میں کہنا کہ اس نے زنا کیا ہے, اس کا حکم سورہ نور میں ہے, جو اس کی تفصیل میں یہاں نہیں جاؤں گا, وہ علماء آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ اس کے لیے چار, میں تو موٹا موٹا بیان کر رہا ہوں کیونکہ اس میں بہت مسائل ہیں اور میں نہیں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو مسائل سارے سنا سکتا, کہ چار گواہ پیش کریں, وہ چار گواہ پیش کریں. میں موٹا موٹا بتا رہا ہوں, پہلا رکوع سورہ نور کا, جو زنا کا کسی پہ الزام لگائیں چار گواہ پیش کریں, اور اگر وہ چار گواہ پیش نہیں کر سکتا یا کر سکتی, یہ دونوں پہ ہے یاد رکھنا, مرد عورت پہ, کوئی بھی کسی پہ بہتان لگا دے, اگر وہ چار گواہ نہیں پیش کر سکتے تو ان کو وہی سزا ملے گی جو زانی کو ملتی ہے, اور ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ آدمی جو اس کو کہہ رہا ہے سزا دلوانے کے لیے, یہ خود سزا کا مستحق بن چکا ہے, مگر یہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ ان کو سزا ملے. اسی طرح اگر کوئی بیوی اپنے مرد پہ, شوہر پہ جو اس کے نکاح میں ہے, اس پہ بہتان لگائے, یا مرد عورت پہ بہتان لگائے, ان کی بھی بڑی سخت ان کا مسئلہ ہے, ان کا رولنگ ہے. حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات گناہوں سے بچو جو مہلک ہیں. پوچھا گیا وہ کیا ہیں, فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, جادو, کسی کو بلا وجہ مار ڈالنا, سود کھانا, یتیم کا مال کھانا, جہاد سے بھاگنا, پاک دامن بھولی بھالی مومنہ پر تہمت لگانا. بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ کبائر میں سے ہے. اور پھر اور حدیث میں ہے کہ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے والے کی 100 سال کی نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں. 100 سال کی نیکیاں صرف تہمت پہ لگانے پہ. تھوڑا سا کہہ دیا نا, مینو تیرے تو شک کا, تو کسے مرد نال پھر دی ہیں, اتنا صرف کہہ دیا سب کچھ تباہ ہو گیا, ختم ہو گیا, آپ کا نکاح کا ستیہ ناس ہو گیا. اگر کسی عورت نے مرد کو یہ کہہ دیا یا مرد نے عورت کو کہہ دیا, اس کو گواہ پیش کرنے ہوں گے, قسمیں اٹھانی پڑیں گی, قسم اٹھانی پڑے گی, بڑی سخت سزا ہے اس کی. اتنا صرف کہہ دیا مرد نے یا عورت نے ایک دوسرے کو, ایک ہے شک, پھر اس کے اوپر پھر باقاعدگی اس کو کنفرم کر دینا, اپروو کر دینا, کنفرم کر دینا کہ نہیں واقعی تو زنا کرتا ہے. ایک ہے مجھے شک ہے, یہ تو ایک پہلا سٹیپ ہو گیا. پھر ہے کہ نہیں تو کرتا ہے یا تو کرتی ہے, تو مردوں کے ساتھ کرتی ہے یہ کام, یہ کرتی ہے, بہت بڑا یہ جرم ہے, سنگین سخت ترین یہ گناہ ہے اسی پہ تہمت لگانا. اس میں آپ کو صرف حدیثیں سناؤں گا کیونکہ حدیث سے بڑھ کر تو کوئی بات نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, وہ بھی صحیح البخاری کی صحیح حدیثیں, جو مضبوط قسم کی صحیح حدیثیں جن کے راوی, وہ آپ کو میں سناؤں گا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ قطات, جو بہتان لگانے والا ہے, الزام تراشی کرنے والا ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. دوسری حدیث جس میں اسامہ بن شریک ابن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے آ کر پوچھا حج کے موقع پہ کہ ہم نے کچھ آگے پیچھے کر دیا, سائی پہلے کر دی, غلطی ہو گئی, طواف آگے پیچھے کر دیا, تو اس میں ہم پر کوئی گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو تھا فرمایا لا حرج, یعنی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے غلطی ہو گئی, غلطی تو یہ ہے, اصل گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کو بدنام کرے اور کسی کی کسی شریف آدمی کو بدنام کرے اور کسی اچھے کردار والے کریکٹر انسان کے کریکٹر پہ انگلی اٹھائے, वो बहुत नुकसान वाला है और वो है सत्यानाश उसका होने वाला है, वो तबाकुन आदमी है, तबाकुन है वो। एक और हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया को कोई आदमी किसी को अगर, ये उसके मफहूम बयान कर रहा हूँ, बोहतान लगाए किसी पर कि फलाना ऐसे है ऐसे है ऐसे है, कोई भी बुरा है, तोहमत लगाए, इल्ज़ाम लगाए किसी किस्म का, उसके अगेंस्ट कोई बात करे, तो वो उसी के अंदर वो आएगा, जब वो मरेगा नहीं जब तक वो खुद वो काम ना कर ले, उसको मौत नहीं आएगी। और हमने ये देखा ऐसे हुआ है। तो इसलिए किसी पे बोहतान बांधना, इल्जाम लगाना, उससे पहले इंसान को 100 मरतबा सोचना चाहिए कि मैं ये जो इल्जाम लगा रहा हूं, किसी पे तोहमत लगा रहा हूं, मैं अपना हाल देखूं कि मेरा क्या हाल है, अपने गरेबान में देखूं कि व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज माय लाइफ। मैं किसी पे बिफोर आई पॉइंट माय फिंगर एट समवन एल्स। अच्छा, एक और बात आया कि इसी पे मैं बात खत्म करता हूं, मैंने और 2-3 बातें करनी थी बहुत जरूरी। आया कि मुझे आप ये मसला बताएं, एक तो ये मसला है कि सुअर खाना उस वक्त उसकी इजाजत है जब आदमी मरने के करीब हो जाता है, मरने वाला है, मरने लगा है, कुछ सूरतों में शराब उसके लिए इजाजत हो जाती है, उसके मसाइल हैं। अब मेरा सवाल है आपके सामने, कोई ऐसा मसला आप मुझे बताएं जिसमें आपको इजाजत है झूठ बोलने की, इजाजत यानी ऐसा झूठ जो यानी कि वो वाला नहीं, जो एक और बात है कि किसी के दरमियान में सुलह करानी हो वो भी उसमें झूठ नहीं होता, वो बात भड़ा चढ़ा करके यार वो तो फलाने तुम्हारे बारे में ऐसे कहता, वो एक अलग बात है। मुझे आप बताएं कि किसी भी सूरत में किसी पर बोहतान लगा देना, जिना का, किसी भी चीज का बोहतान लगाना किसी सूरत में जायज है या नहीं है, ये मुझे बताएं। जायज है किसी भी सूरत में किसी को कहना कि ये जानी है, ये फलाना है, ये इसने किया, ये इसने किया, ये झूठा है, ये फलाना है, किसी भी सूरत में कहना ये जायज है? या लोगों के दरमियान में जाकर इस चीज को फैलाना, लोगों को जाकर बताना कि फलाना आदमी फलाना ऐसे है, फलाना ऐसे है, फलाना ऐसे है, हर आदमी को जाकर बताना और इसको फिर नेकी समझना, ये उस आदमी से कम नहीं है जिसने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, ये उससे को कम नहीं है। वो कौन था? इब्ने मुलज़िम। इसने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करते वक्त कुरान पाक की आयत पढ़ रहा था, अपने आप को मुसलमान कहलाता था, मुसलमानों का नाम यानी मुसलमान अपने आप को कहलाता था, और कुरान की आयत पढ़ते हुए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया उसने। इसमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। जो लोग अपने आप को हक पे समझते हैं कि हमारा हक है कहना, जी मैं तो उसके मुंह पे जाके कहूंगा कि तू झूठा, मैं तो उसके मुंह पे जाके कहूंगा कि तू बुरा इंसान है, इतना इंसान गिर जाता है। और ये यहां से आप समझ लें कि दूसरा इंसान तो शायद पाक होवे होवे एत पाक नहीं गा, फिर कि इस इतना गिर चुका है ये इंसान, इतना गिर चुका है कि ये कहता है कि मैं उसके मुंह पर भी जाकर कह दूंगा कि तू जानी है, इतना यानी कि जुर्रत, इतनी जुर्रत। ये मुझे आप बताएं, आज मसला मेरे लिए पास आ जाए कोई भी मसला सुन्नियों का कि जिसमें हो कि ये जायज है ऐसे करना, कि ऐसे यू कैन डू दैट और आप बच भी जाएंगे। ये भी साथ ले आना मेरे लिए कोई फतवा कि ये आदमी पर जन्नत भी हलाल है। इब्ने मुलज़िम तो जाएगा जहन्नम में, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कातल, ये रवाफ़िज़ ख़वारिज, ये जो कलमा पढ़ते थे और ये निशान थे इनके सरों पे, माथे पे सजदों के निशान थे, कलमा पढ़ते थे मगर इन्होंने मुखालफत की नेक लोगों की। तो ये मुखालफत करने वाले लोग मुझे बताएं कि इनके पास कौन सा ठेका है कि ये जन्नत में जाएंगे बोहतान लगाकर अपनी औरतों पे कि तू जानी है, है? मुझे बताएं कौन जाएगा जन्नत में, इन्होंने ठेका लिया हुआ है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और बचा कर रखे, सुन्नत अदा कर। टाइम का भी नोट कर लें, क्योंकि वक्त जोहर का शुरू होता है 12:33 पे, तो इसलिए इन दोनों में जो है वो बयान वगैरह 1 बजे के तकरीबन ख़त्म हो गया, अराउंड अबाउट 1 o'clock, बिकॉज ऑफ द जोहर इज नाउ स्टार्टिंग लेटर 12:33।
Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar.
Ashhadu an la ilaha illallah.
Ashhadu an la ilaha
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك عن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك عن حذيفة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات صدق الله المولانا العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فيا معشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأكبر सफ़ों को दूर शरमा लें प्लीज़ पुट योर हील्स ऑन द वाइट लाइंस अपने एडो को सफ़ेद लाइन पे रख लें मिल मिल के खड़े हो जाएं अल्लाहु अकबर الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر
اللہ اکبر
اللہ اکبر
اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیماروں کے لیے دعا فرمائے اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے جو فوت ہو گئے, ہمارے خصوصاً والدین جو دنیا سے انتقال فرمائے گئے, جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار, اور سٹرلنگ کے امام مولانا کامران صاحب, ان کا آج سیکنڈ آپریشن ہے, سر کا ٹیومر ہے, تو ان کے لیے دعا فرمائے خصوصی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب دے, ان کو کامیابی دے اور ان کو شفا عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے بھائی جاوید صاحب ہیں, ان کے بھانجے ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائے, ان کو دل کی تکلیف ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرمائے. اسی طرح جتنے بیمار ہیں جن کا ہمیں یاد نہیں ہے, جن کا یاد ہے, جو گھروں میں ہسپتالوں میں, اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.